चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 15 श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी कृष्ण के उर्मी पूर्ण प्रेम के सागर को समझ पाना कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने आप को उस सागर में निमज्जित कर दिया और उनका हृदय उसी प्रेम में निमग्न हो गया। इस तरह उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम के उच्च पद को विविध प्रकार से प्रकट किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। दिव्य आनंद से पूरी शरीर वाले भगवान नित्यानंद की जय हो। भगवान चैतन्य के अत्यंत प्रिय श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के भक्तों की जय हो। इस तरह कृष्ण प्रेम रूपी सागर में निमग्न होने से श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने आप को भूले रहते। महाप्रभु तीन प्रकार की चेतना में अपनी स्थिति बनाए रखते थे। कभी वे पूर्णतया भावाविष्ट हो जाते, कभी आदि बाह्य चेतना में होते तो कभी पूर्ण बाह्य चेतना में होते। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव भावावेश में निमग्न रहते थे, किंतु जिस तरह कुम्हार का चाक बिना छुए ही चलता रहता है, उसी तरह महाप्रभु के शारीरिक कार्य यथा स्नान करना, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना तथा भोजन करना स्वयं अपने आप होते रहते थे। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ की ओर देख रहे थे, तब उन्हें जगन्नाथ जी साक्षात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण प्रतीत हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी में स्वयं कृष्ण की अनुभूति हुई तो महाप्रभु की पांचों इंद्रियां भगवान कृष्ण के पांच गुणों के आकर्षण में तुरंत समा गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मन भगवान कृष्ण के पांच दिव्य गुणों से पांच दिशाओं में उसी तरह आकर्षित हो रहा था जिस तरह रस्सा कसी में होता है। अतएव महाप्रभु अचेत हो गए। उसी समय भगवान जगन्नाथ का उपल भोग उत्सव समाप्त हुआ और जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ मंदिर गए थे वे उन्हें घर लौटा ले आए। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय रहे। महाप्रभु उन दोनों के गले में हाथ डालकर विलाप करने लगे। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के महान वियोग से अत्यधिक व्याकुल हो गई, तब उन्होंने विशाखा से अपनी महान चिंता तथा व्याकुलता का कारण बतलाने वाला एक श्लोक कहा। उसी श्लोक को सुनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन के संताप भाव को व्यक्त किया। तब उन्होंने अत्यंत विलाप करते हुए स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय को उस श्लोक की व्याख्या सुनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के सदृश हैं, किंतु वे कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर की लहरों से अपलावित हैं, उनकी मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करती है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है और उनकी शारीरिक सुगंध का अमृत संपूर्ण जगत को अपलावित करता है। हे सखी, वे कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं और जिनके होंठ अमृत तुल्य हैं, मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। भगवान कृष्ण का सौंदर्य, उनके शब्दों की ध्वनि तथा उनकी वंशी की ध्वनि, उनका स्पर्श, उनकी सुगंध तथा उनके अधरों का स्वाद, ये सब अवर्णनीय मधुरता से ओतप्रोत हैं। जब ये सारे गुण मेरी पांचों इंद्रियों को एकाएक आकृष्ट करते हैं, तो मेरी सारी इंद्रियां मेरे मन रूपी अकेले घोड़े पर एक साथ चढ़ जाती हैं, किंतु वे पांच विभिन्न दिशाओं में जाना चाहती हैं। हे सखी, मेरे दुख का कारण सुनो। मेरी पांचों इंद्रियां वस्तुतः असंयमी धूर्त हैं। वे बलि भांति जानती हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु तो भी वे कृष्ण की संपत्ति का हरण करना चाहती हैं। मेरा मन उस अकेले घोड़े के समान है जिस पर दृष्टि इत्यादि पांच इंद्रियां आरूढ़ हैं। हर इंद्रिय उस घोड़े पर आरूढ़ होना चाहती है। इस तरह वे मन को एक साथ पांच दिशाओं में खींचती हैं, तो यह किस दिशा में जाएगा? यदि वे सब इकट्ठी खींचती हैं, तो बेचारा घोड़ा निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग देगा। भला मैं इस क्रूरता को कैसे सह सकती हूँ? हे सखी, यदि तुम कहो कि अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, तो मैं क्या कहूँ? मैं अपनी इंद्रियों पर रुष्ट नहीं हो सकती। क्या ये उनका दोष है? कृष्ण का सौंदर्य, शब्द, स्पर्श, सुगंध तथा स्वाद स्वभावतः अत्यधिक आकर्षक हैं। ये पांचों गुण मेरी इंद्रियों को आकृष्ट कर रहे हैं और इनमें से हर एक मेरे मन को अलग अलग दिशा में खींच ले जाना चाहता है। इस प्रकार मेरे मन का प्राण महान संकट में है। जिस तरह किसी घोड़े पर बैठकर पांचों दिशाओं में एक साथ जाने का प्रयास किया जाए, इस तरह मैं भी मृत्यु के संकट में हूँ। तीनों लोकों में प्रत्येक स्त्री की चेतना निश्चित रूप से एक ऊंचे पर्वत की तरह है, किंतु कृष्ण की सौंदर्य माधुरी समुद्र के तुल्य है। उस समुद्र की एक बूंद भी संपूर्ण जगत को अपलावित कर सकती है और चेतना के सारे ऊंचे पर्वतों को जलमग्न कर सकती है। कृष्ण के परिहास पूर्ण वचनों की मधुरता सारी स्त्रियों के हृदय का अवर्णनीय ध्वंस करती है। उनके शब्द स्त्रियों के कानों को उनके माधुर्य के साथ बांध लेते हैं। इस तरह की खींचा तानी के कारण कान का प्राण चला जाता है। कृष्ण का दिव्य शरीर इतना शीतल है कि उसकी उपमा चंदन लेप से या करोड़ों चंद्रमाओं से भी नहीं दी जा सकती। यह समस्त स्त्रियों के उन्नत पर्वतों जैसे तनों को दक्षता पूर्वक आकृष्ट करता है। निसंदेह कृष्ण का दिव्य शरीर तीनों लोकों की समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करता है। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध से भी अधिक मादक है और यह नील कमल की सुगंध का भी अतिक्रमण करने वाली है। यह संसार की समस्त स्त्रियों के नथुनों में प्रवेश करती है और वहीं अपना निवास स्थान बनाकर उन्हें आकृष्ट करती रहती है। कृष्ण के होंठ इतने मधुर हैं कि जब उनमें उनके मंद हाथ का कपूर मिल जाता है तब वे समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करते हैं और उन्हें बाध्य कर देते हैं कि वे अन्य सारे आकर्षणों का परित्याग कर दें। यदि कृष्ण की मंद हाथ रूपी मधुरता नहीं मिल पाती तो इससे महान मानसिक कठिनाइयां तथा शोक उत्पन्न होता है। यह मधुरता ही वृंदावन की गोपियों का एकमात्र धन है। इस तरह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के गले लग गए। फिर महाप्रभु ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरी बात सुनो। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? कृष्ण को पाने के लिए कहां जा सकता हूं? तुम दोनों मुझे बताओ कि मैं उनको कैसे पा सकता हूं? इस तरह दिव्य पीड़ा में निमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन प्रतिदिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय की गोष्ठी में विलाप करते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उपयुक्त गीत गाते और रामानंद राय उपयुक्त श्लोक सुनाते जिससे महाप्रभु का आनंद वर्धित होता रहे। इस तरह वे उन्हें सांत्वना दे पाते। महाप्रभु बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत विद्यापति की कविता तथा जयदेव गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद को विशेष रूप से सुनना पसंद करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथी इन पुस्तकों से श्लोक सुनाते और गीत गाते तब महाप्रभु अत्यधिक आनंदित होते। एक दिन समुद्र के किनारे जाते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक एक पुष्प वाटिका देखी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुष्प वाटिका को वृंदावन समझ लिया और वे तेजी से उसमें प्रवेश कर गए। कृष्ण प्रेम में मग्न होकर वे पुष्प वाटिका में घूमते रहे और कृष्ण को खोजते रहे। जब रास नृत्य के समय कृष्ण राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए तब गोपियां उन्हें ढूंढती हुई जंगल में घूमने लगी। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उस पुष्प वाटिका में घूमते रहे। गोपियों के भाव में मग्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु इधर उधर घूमने लगे। वे सारे वृक्षों तथा लताओं से श्लोक सुना सुना कर कृष्ण के विषय में पूछने लगे। गोपियों ने कहा, हे च्युत वृक्ष, प्रियाल, पनस, आसन तथा कोविदार वृक्षों, हे जम्बू वृक्ष, हे अर्क वृक्ष, हे बेल, बकुल तथा आम, हे कदम्ब, हे नीप तथा अन्यों का कल्याण करने वाले यमुना तट पर खड़े अन्य वृक्षों, कृपा करके हमें बता दो कि कृष्ण कहाँ गए हैं। हम अपने मन को खो चुकी हैं और मृत प्राय हैं। हे सर्व मंगल तुलसी वृक्ष, तुम गोविंद के चरण कमलों को अत्यंत प्रिय हो और वे तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं। क्या तुमने अपने पत्रों की माला पहने और भौरों के झुंड से घिरे कृष्ण को यहाँ जाते हुए देखा है? हे मालती, मल्लिका, जाति तथा युथी का पुष्पों के वृक्षों, क्या तुमने कृष्ण को अपने हाथों से तुम्हें आनंदित करने के लिए तुम्हारा स्पर्श करते हुए इधर से जाते देखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे आम के वृक्ष, हे कटहल के वृक्ष, हे पियाल, जंबू तथा कोबीदार वृक्षों, तुम सभी तीर्थ स्थानों के निवासी हो, इसलिए तुम कृपया अन्यों के कल्याण हेतु कार्य करो। क्या तुमने कृष्ण को इधर आते देखा है? कृपा करके हमें बतला दो कि वे किधर से गए हैं और हमारे प्राण बचा लो। जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया तो गोपियों ने अनुमान लगाया, क्योंकि ये सारे वृक्ष पुरुष जाति के हैं, अतएव अवश्य ही ये कृष्ण के मित्र होंगे। भला ये वृक्ष हमें क्यों बताने लगे कि कृष्ण कहाँ गए हैं? चलो इन लताओं से क्यों न पूछें, ये स्त्री जाति की हैं और ये हमारी सखियों जैसी हैं। ये हमें अवश्य बतलाएंगी कि कृष्ण कहाँ गए हैं, क्योंकि उन्हें इन्होंने स्वयं देखा है। इस तरह अनुमान लगाते हुए गोपियों ने तुलसी आदि वृक्षों तथा लताओं से पूछा, हे तुलसी, हे मालती, हे युथी, माधवी तथा मल्लिका, तुम सबों को कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं, अतएव वे तुम्हारे पास अवश्य आए होंगे। तुम सभी हमारी सखियों के समान हो, कृपा करके हमें बताओ कि कृष्ण किधर गए हैं और हमारे प्राणों की रक्षा करो। इतने पर भी जब उन्हें उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने सोचा, ये सारी लताएं कृष्ण की दासियां हैं और वह वश ये हमें नहीं बतलाएंगी। तब गोपियों ने मृगियों को देखा, कृष्ण के शरीर की सुगंध पाकर तथा मृगियों के मुखों को देखकर गोपियों ने यह निश्चित करने के लिए कि क्या कृष्ण पास में ही हैं, उनसे पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे मृगी, भगवान कृष्ण अपनी प्रेयसी का आलिंगन कर रहे थे, जिससे उसके उठे हुए स्तनों पर लगा कुमकुम कुंज फूलों की उनकी माला पर चिपक गया है। उस माला की सुगंध यहाँ बह रही है। हे प्रिय सखी, क्या तुमने कृष्ण को अपनी सर्व प्रिय संगनी के साथ इस ओर से जाते और तुम सबों की आंखों के आनंद को वर्धित करते देखा है? हे मृगी, श्री कृष्ण तुम्हें आनंदित करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। कृपा करके हमें बताओ कि क्या वे श्रीमती राधा रानी के साथ इधर से निकले हैं? हम सोचती हैं कि वे अवश्य ही इधर आए होंगे। हम कोई बाहरी स्त्रियां नहीं हैं। श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखियां होने के कारण हम दूर से ही कृष्ण की शारीरिक गंध को जान सकती हैं। कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा का आलिंगन करने से उनके वक्ष स्थलों में लगा कुमकुम चूर्ण कृष्ण के शरीर को सुशोभित करने वाली कुंद माला में लग गया है। उस माला की सुगंध ने पूरे वायुमंडल को सुगंधित बना दिया है। भगवान कृष्ण ने यह स्थान छोड़ दिया है, इसीलिए मृगियां विरह का अनुभव कर रही हैं। वे हमारे शब्द नहीं सुन रही, अतएव वे उत्तर दे तो कैसे दे। तब गोपियां अनेक वृक्षों के पास आई, जिनकी शाखाएं फलों तथा फूलों से लदी होने के कारण भूमि पर झुक गई थी। गोपियों ने सोचा कि चूंकि इन सारे वृक्षों ने कृष्ण को अपने पास से जाते हुए देखा होगा, इसलिए वे उन्हें सादर नमस्कार कर रहे हैं। निश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने वृक्षों से पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे वृक्षों, कृपा करके हमें बतलाओ कि क्या बलराम के छोटे भाई कृष्ण ने इधर से जाते हुए श्रीमती राधा रानी के कंधे पर अपना एक हाथ रखे तथा दूसरे हाथ में कमल लिए हुए तथा तुलसी दलों की सुगंध से उन्मत्त भौरों के दल से पीछा किए जाते हुए तुम्हारे प्रणाम का स्वागत प्रेममय चितवन से किया है? अपनी प्रिया के मुख पर भौरों को बैठने से रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल फूल से उन्हें भगा दिया और इस तरह उनका मन कुछ चलायमान हुआ। जब तुम लोगों ने उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, कृपा करके अपने शब्दों के लिए साक्ष्य दो। कृष्ण के वियोग ने इन सेवकों को अत्यंत दुखी बना दिया है। अपनी चेतना खोकर भला ये हमें किस तरह उत्तर दे सकते हैं? यह कहकर गोपियां यमुना नदी के तट की ओर अग्रसर हुई। वहां पर उन्होंने कृष्ण को एक कदंब वृक्ष के नीचे देखा। वहां पर खड़े अपने होठों पर वंशी रखे हुए करोड़ों काम देवों को मोहित करने वाले कृष्ण अपनी असीम सुंदरता से समस्त जगत की आंखों तथा मनों को आकृष्ट कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की दिव्य सुंदरता देखी तो वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त गण उस पुष्प वाटिका में उनके पास आ गए। उन्होंने पहले की ही तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य प्रेमावेश के लक्षणों को प्रकट देखा। यद्यपि वे बाहर से विह्वल लग रहे थे किंतु भीतर से वे दिव्य आनंद का आस्वादन कर रहे थे। एक बार फिर सारे भक्तों ने मिलकर प्रयास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से सचेत किया। तब महाप्रभु उठे और चारों ओर देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें अभी देखा था और उनके सौंदर्य ने मेरे नेत्रों तथा मन को हर लिया है। मैं कृष्ण को उनके होठों पर मुरली रखे पुनः क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मेरी आंखें उन्हें एक बार पुनः देखने की आशा से इधर उधर घूम रही हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी प्रिय सखी विशाखा से कहा था। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की द्युति नव निर्मित बादल से भी अधिक तेजोमय है और उनका पीतांबर प्रकट होने वाली नवीन बिजली से अधिक आकर्षक है। उनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है और उनके गले में मोतियों की चमकीली माला लटक रही है। ज्यों ही वे अपने होठों पर मनोहर मुरली धारण करते हैं, उनका मुख मंडल पूर्ण शरद कालीन चंद्रमा के समान सुंदर लगता है। ऐसे सौंदर्य से युक्त कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन उनके दर्शनार्थ मेरी आंखों की इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, श्री कृष्ण का रंग चूर्ण किए हुए अंजन की भांति चमकीला है। यह नव निर्मित बादल की शोभा को अतिक्रमण करने वाला है और नीले कमल से भी अधिक कोमल है। निसंदेह उनका रंग इतना मोहक है कि यह हर एक के नेत्रों तथा मन को आकृष्ट करता है और इतना प्रबल है कि सारी उपमाओं को पार कर जाता है। हे प्रिय सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? कृष्ण अद्भुत बादल के समान आकर्षक हैं और मेरी आंखें चातक पक्षी के समान हैं, जो प्यास के मारे मर रही हैं, क्योंकि वे ऐसा बादल नहीं देख पा रही। कृष्ण का पीतांबर आकाश में चंचल बिजली के समान प्रतीत होता है और उनके गले की मोती की माला बादल के नीचे उड़ रही बगुलों की पंक्ति जैसी प्रतीत होती है। उनके सिर का मोर पंख तथा उनकी वैजयंती माला पांच रंग के फूलों वाली इंद्रधनुषों के समान लगती है। कृष्ण के शरीर की कांति नवोदित निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है और उनकी वंशी की ध्वनि नव निर्मित बादल की मधुर गर्जना के समान है। जब वृंदावन के मोर उस ध्वनि को सुनते हैं तो वे नृत्य करने लगते हैं। कृष्ण लीलाओं का बादल अपनी अमृत वर्षा से 14 लोकों को सिक्त कर रहा है। दुर्भाग्यवश जब वह बादल प्रकट हुआ तो हवा का एक प्रबल झोंका आया, जो उसे मुझसे दूर उड़ा ले गया। उस बादल को न देख पाकर मेरे चकोर रूपी नेत्र प्यास से मृत प्राय हो गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवरुद्ध वाणी से पुनः कहा, हाय हाय राम राय, तुम पढ़ते रहो। इस तरह रामानंद राय एक श्लोक पढ़ने लगे। इस श्लोक को सुनते हुए महाप्रभु कभी अत्यधिक हर्षित होते तो कभी शोक संतप्त हो जाते। बाद में महाप्रभु ने स्वयं ही इस श्लोक की व्याख्या की। हे कृष्ण, गुंगराले बालों से सुशोभित आपके सुंदर मुख को, आपके गाल पर लटकते कुंडलों की शोभा को, आपके होठों के अमृत को, आपकी हंसीली चितवनों के सौंदर्य को, अभय प्रदान करने वाली आपकी दोनों भुजाओं को तथा दाम्पत्य का आकर्षण उत्पन्न करने वाला आपके चौड़े वक्ष स्थल के सौंदर्य को देखकर हमने आपकी दासी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चंद्रमा तथा कमल को जीत लेने के बाद कृष्ण ने मृगी समान गोपियों को पकड़ना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने सुंदर मुख रूपी फंदे को फैला दिया और गोपियों को फंसाने के लिए उसमें अपनी मधुर हंसी का चारा रख दिया। गोपियां उस फंदे की शिकार बन गई और अपने घर परिवार पति तथा प्रतिष्ठा को त्याग कर कृष्ण की दासियां बन गई। हे सखी, कृष्ण एक शिकारी जैसा ही आचरण करते हैं। यह शिकारी पुण्य या पाप की परवाह नहीं करता। वह मृगी सदृश गोपियों के अंतरतम को जीतने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां अपनाता है। कृष्ण के गालों पर नृत्य करते कुंडल मकर के आकार के हैं और वे बहुत उज्जवल प्रकाश से चमकते हैं। ये नृत्य करते कुंडल सारी स्त्रियों के मनों को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान भरी चितवन के बाणों से स्त्रियों के हृदयों को भेद देते हैं। इस तरह से स्त्रियों का वध करते हुए वे तनिक भी भयभीत नहीं होते। कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह जैसे आभूषण हैं, जो लक्ष्मी के निवास का सूचक चिन्ह है। उनका वक्ष स्थल जो लुटेरों के वक्ष स्थल जैसा चौड़ा है, लाखों व्रज बालाओं के मनों तथा वक्ष स्थलों को बलात् आकृष्ट करता है। इस तरह वे सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दासियां बन जाती हैं। कृष्ण की दोनों सुंदर भुजाएं लंबी जंजीरों पाश के समान हैं। वे उन काले सर्पों के शरीर से भी मिलती जुलती हैं, जो स्त्रियों के दो पर्वताकार स्तनों के बीच की संधि में प्रवेश करके उनके हृदयों को दस लेते हैं। तब स्त्रियां विष की अगन से मर जाती हैं। कपूर, खसखस की जड़ें तथा चंदन, इन तीनों के सम्मिलित शीतलाकारी प्रभाव को कृष्ण की हथेलियों की तथा उनके पैरों के तलवों की शीतलता अतिक्रमण कर जाती है, क्योंकि ये करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल तथा मन भावन है। यदि स्त्रियों को इनका एक बार भी स्पर्श हो जाता है तो उनके मन बहक जाते हैं और कृष्ण के लिए कामेच्छा की विष ज्वाला तुरंत दूर हो जाती है। प्रेमावेश में विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखी श्रीमती विशाखा से अपने हृदय का शोक प्रकट करने के लिए कहा था। हे सखी, कृष्ण का वक्ष स्थल इंद्र नील मणि से बने द्वार की तरह चौड़ा और आकर्षक है। उनकी दोनों बाहें जंजीर की तरह दृढ़ हैं और वे उन युवतियों की मानसिक चिंता को दूर कर सकती हैं जो उनके लिए कामेच्छाओं से पीड़ित है। उनका शरीर चंद्रमा, चंदन, कमल पुष्प तथा कपूर से भी अधिक शीतल है। इस तरह कामदेव को आकर्षित करने वाले मदन मोहन मेरे वक्ष स्थलों की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी अभी मुझे कृष्ण मिले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मैंने पुनः उन्हें खो दिया है। कृष्ण स्वभाव से अत्यधिक चंचल हैं। वे एक स्थान पर नहीं रुकते, वे किसी से मिलते हैं, उसके मन को हर लेते हैं और तब अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां अपने महान सौभाग्य से गर्वित हो गई। उनकी श्रेष्ठता के भाव को दमित करने के लिए तथा उन पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने के लिए केशव, जो कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी का भी दमन करने वाले हैं, रास नृत्य से अंतर्धान हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, आप कृपया एक गीत गाओ जो मेरे हृदय को सचेष्ट कर सके। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी गीत गोविंद का निम्नलिखित पद अत्यंत मधुर स्वर में गाने लगे। यहाँ रास नृत्य के स्थल में मैं कृष्ण का स्मरण करती हूँ, जिन्हें परिहास करना तथा लीलाएं करना अत्यंत प्रिय है। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह विशिष्ट पद गाया तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ खड़े हुए और प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आठों प्रकार के आध्यात्मिक विकार, सात्विक भाव प्रकट हो आए। यही नहीं, शोक तथा हर्ष इत्यादि 3300 व्यभिचारी भाव भी प्रकट हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सारे भाव लक्षण यथा भावोदय, भाव संधि तथा भाव शाबल्य उदय हो आए। फिर भावों में परस्पर विकट युद्ध होने लगा और उनमें से हर एक प्रधान बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से बारंबार उसी श्लोक को गाने के लिए कहा। वे जितनी बार गाते महाप्रभु को नया आस्वादन प्राप्त होता और वे बारंबार नृत्य करने लगते। जब महाप्रभु देर तक नृत्य करते रहे तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस श्लोक को गाना बंद कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा, गाओ, गाते रहो, किंतु महाप्रभु की थकान को देखते हुए स्वरूप दामोदर ने उसे फिर नहीं गाया। जब भक्तों ने महाप्रभु को गाते रहो कहते सुना तब वे सब उनके चारों ओर एकत्र हो गए और एक साथ हरिनाम का कीर्तन करने लगे। उस समय रामानंद राय ने महाप्रभु को बिठाया और उन पर पंखा झलकर उनकी थकान दूर की। तब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट ले गए और उन्हें स्नान कराया। अंत में वे उन्हें घर लौटा ले आए। महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने के बाद उन्हें लिटा दिया गया। तब रामानंद इत्यादि सारे भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पुष्प वाटिका भ्रमण की लीला का वर्णन किया है। महाप्रभु ने वृंदावन समझकर इस पुष्प वाटिका में प्रवेश किया था। वहां पर उन्होंने दिव्य उन्माद तथा प्रलाप प्रकट किया, जिसे रूप गोस्वामी ने अपनी तवमाला में सुंदर ढंग से इस प्रकार अंकित किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भक्त हैं। समुद्र तट पर विचरण करते हुए कभी कभी वे पास ही सुंदर उद्यान देखते और उसे वृंदावन का जंगल समझ बैठते। इस तरह वे कृष्ण प्रेम से पूर्णतया विह्वल हो जाते तथा पवित्र नाम का कीर्तन और नृत्य करने लगते। जब वे कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते तो उनकी जीभ निरंतर चलती रहती। क्या वे पुनः मेरे नेत्रों के समक्ष दृष्टि गोचर होंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उनको ठीक ठीक लिख पाना संभव नहीं है। मैं उनका परिचय देने के प्रयास में उनको इंगित मात्र कर सकता हूँ। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्ण दास श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्योन्माद शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे